जय राधमा भव कुंज बिहारे,
यह प्रवचन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोक संख्या 22 पर 3 अप्रैल 2016 को वृंदावन में दिया गया।
गोपी जाना वाला भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा, सा वह भक्ति श्रद्धया श्रद्धा तथा संकल्प से भगवत धर्म भक्ति चर्या विवेचना से जिज्ञासया जिज्ञासा से अध्यात्म संबंधी योग निष्ठया आत्मज्ञाने दृढ़ निश्चय से योगेश्वर भगवान की उपासना पूजा से च तथा नित्यं नियमित रूप से पुण्य श्रवः जिनके सुनने से कथया विवेचना से पुण्यया पुण्य से च ही। इसका अनुवाद और तत्पर श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जोर से बोलिए। आप अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। भक्ति करने भगवान के प्रति जिज्ञासा करने जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करने पूर्ण पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान की पूजा करने तथा भगवान की महिमा का श्रवण एवं कीर्तन करने से परमेश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ाई जा सकती है। ये सारे कार्य अपने आप में परम पवित्र है। इसका तात्पर्य है, आप सब सुनिए। योगेश्वर शब्द भगवान कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। भगवत गीता में यह शब्द दो बार आया है। 18वें अध्याय 1878 में श्री कृष्ण को भगवान हरि कहा गया है, जो समस्त योग शक्ति के स्वामी है, यत्र योगेश्वरः कृष्णः। 6वें अध्याय के अंत में भी 647 योगेश्वर शब्द की व्याख्या सब में युक्त तमो मतः करके की गई है। युक्त तमा से सर्वोच्च योगी अर्थात भक्त गण का बोध होता है, जिसे योगेश्वर भी कहा जा सकता है। इस श्लोक में योगेश्वर शब्द योगेश्वर उपासना का अर्थ है शुद्ध भक्त की सेवा करना। अतः नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइबे कृपा। शुद्ध भक्त की सेवा किए बिना आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। प्रहलाद महाराज ने भी भागवत में कहा है निशाम मतिस तावत उरु क्रमांधी स्पर्शति अनर्थापनो यदर्थः वही यसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम नामरणी यावत। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे शुद्ध भक्त की शरण में जाए जो सदैव भक्ति में लगा रहता है और उसे संसार से कुछ लेना देना नहीं रहता। केवल उसी की सेवा से मनुष्य भव सागर को पार कर सकता है। इस श्लोक में संस्तुति की गई है योगेश्वर उपासनया कि मनुष्य को चाहिए कि सर्वोच्च योगी या भक्त के चरण कमलों की सेवा करे। सर्वोच्च भक्त की सेवा का अर्थ होता है उससे भगवान की महिमा का श्रवण करना। शुद्ध भक्त के मुख से भगवान की महिमा के श्रवण से पवित्र जीवन का लाभ मिलता है। भगवत गीता 7:28 में भी ये कहा गया है कि पवित्र हुए बिना मनुष्य भक्ति में नहीं जुट सकता। ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजंती माम दृढ़ व्रता। भक्ति में स्थित होने के लिए प्रकृति के समस्त भौतिक गुणों के कलमश को पूरी तरह धो डालना होता है। भक्ति के कार्य में पहली बात है आदो पूर्वाश्रयम। मनुष्य को चाहिए कि परमाणिक गुरु बनाए और उससे दिव्य वृत्ति परक धर्म सद्धर्म पृच्छा के विषय में पूछताछ करे और फिर साधु पुरुषों तथा भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करे। साधु मार्ग अनुगमनम रूप गोस्वामी कृत भक्ति सागर सिंधु में ये आदेश दिए गए हैं। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान के प्रति अनुरक्ति बनाने के लिए सब पहले प्रमाणिक गुरु बनाना होता है और उनसे भक्ति की विधियां सीखनी होती है तथा भगवान के दिव्य संदेश एवं महिमा के विषय में सुनना होता है। इस प्रकार मनुष्य को भक्ति के विषय में अपना निश्चय बढ़ाना होता है, तभी भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ाने में बहुत आसानी होगी। इसका अनुवाद मैं पढ़ रहा हूँ एक बार। भक्ति करने, भगवान के प्रति जिज्ञासा करने, जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करने, पूर्ण पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान की पूजा करने तथा भगवान की महिमा का श्रवण एवं कीर्तन करने से परमेश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ाई जा सकती है। ये सारे कार्य अपने आप में परम पवित्र है।
जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए और महाराज क्या जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। संत कुमार बड़े प्रसन्न हुए इस प्रश्न को सुनकर, क्योंकि उनको पता था कि इस अवतर से पूरी पृथ्वी लाभ उठा सकती है। तो इस श्लोक में संत कुमार ने कहा कि बहुत कार्य से दूर भगवान के प्रति आसक्ति बनाना चाहिए और इस प्रकार के कार्य करना चाहिए भगवान के प्रति आसक्ति बनाना। पर आगे आज के श्लोक में बताया जा रहा है आसक्ति कैसे बढ़ा जा रहा है, कैसे बढ़ा सकते हैं। ये सब हम पहले कई बार सुन चुके हैं, बार बार सुनने से ज्यादा गहराई के साथ संदेश है। तो क्या उपदेश दिया जा रहा है? अनंत कुमार कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले भक्ति योग के विधियों का पालन करना चाहिए। ये है सारे शास्त्र का निर्णय कि भक्ति योग एक साधन है जिसके द्वारा परम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। भगवान गीता में कहते हैं पत्र पुत्र फल प्रेम और भक्ति के साथ अगर कोई जल भी अर्पण करेगा उसमें सुधार कर लेगा। दूसरे शब्दों में भक्तियों का पालन हर व्यक्ति कर सकता है, केवल श्रद्धा की आवश्यकता है। और जैसे कि लोग समझ कहते हैं कि सबसे पहले हमारे हृदय में ये श्रद्धा होनी चाहिए कि हम भगवान के शरण में परम भगवान हरि के हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में ईश्वर और विराजमान होने के कारण वो समझ पाते हैं हमारी क्या इच्छा है। जब भगवान देखते हैं कि हमारी इच्छा है उनके शरणगत होने के लिए तो वो हमें कोई साधु भेजते हैं जो कि हमें उपदेश है और साधु का उपदेश का हम जब पालन करें फिर हमारी जो अनादर है कमजोर हो जाती है। तो यह कहा जा रहा है कि अगर हम भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाना चाहें तो भौतिक समाज में सबका भाव क्या रहता है, सबका भाव रहता है कि हम भौतिक कार्यों के प्रति आसक्ति बढ़ाए। हम उस वातावरण में पढ़ते हैं जहाँ की हमें ये शिक्षा दी जाती है कि भौतिक कार्यों के प्रति आसक्ति कैसे बढ़ाया जाए। आज के वातावरण में जो शिक्षा प्राप्त हो रही है पाठशालाओं में और समाज में उनके द्वारा हम अच्छे होने के वक्त ये उपदेश दिया जा रहा है। और जब आप भक्तों के संग में आते हो तो आपको शिक्षा मिलती है कि हमें परम भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ानी चाहिए। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जो सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो स्वीकार करो और जो प्रतिकूल है उसे त्याग दो। तो यहाँ कहा जा रहा है सबसे पहले अगर आप आसक्ति बढ़ाना चाहो तो भक्ति योग की विधियों का पालन करना चाहिए। भक्ति योग की विधियों का पालन का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि हमें अनेक इंद्रियों का वाणी का मन का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। ये अवसर जब हम भक्तियों की विधियों की चर्चा करते हैं तो उसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है वाणी का उपयोग करना भगवान की सेवा में। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं वाणी के द्वारा हमें वाणी की क्या तपस्या है, वाणी की तपस्या है कि आप सदा भगवान का गुणगान करो, वाणी की तपस्या है कि आप कृष्ण कथा की चर्चा करो। गुरु स्वामी जी देशमित में सूचना देते हैं कैसे भक्ति बढ़ सकती है कैसे नष्ट हो सकती है और इस विश्व में कहते हैं भौतिक चर्चा या प्रजल यहाँ कह रहे भक्ति योग की विधियों का पालन करो द्वारा भगवान का गुणगान द्वारा सत्य का उच्चारण करो और गीत द्वारा सत्य का उच्चारण करो परमेश्वर के साथ और आगे मन द्वारा महाराज तो आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि परम भगवान के विषय में प्रश्न पूछो। आप देखते हो कि भागवतम में प्रश्न और उत्तर है, जैसे आप अगर विद्या की तरफ तैयारी कर रहे हो तो वो किताबें पढ़ते हो, लिखते हो, प्रश्न उत्तर। भागवतम में क्या है, पूरे भागवतम प्रश्नों से भरा हुआ है। यहाँ भी 500 पहले पृथ्वीराज ने प्रश्न पूछे, हालांकि वो भगवान के शक्तिवेश अवतार है, पर जो जो संतों से मिले उन्होंने उदाहरण दिया, इस प्रकार संत का स्वागत करना चाहिए, उनके चरण धोए और पूछा उनसे कि हमें अभी ऐसे चलो जीवन का क्या लक्ष्य है। तो इसके द्वारा हमें ये शिक्षा मिल रही है क्या, अगर आप प्रश्न पूछना है तो किस प्रकार का प्रश्न पूछो। अक्सर हम जब संतों को मिलते हैं तो हम कहते हैं आशीर्वाद, एक प्रकार से उसका अर्थ यह है आशीर्वाद दो कि हम धनी बन जाए, आशीर्वाद दो कि हमें इंडिया देश की सुविधा हो प्राप्त हो। तो अगर आप कहोगे आशीर्वाद से भक्ति में पढ़ने का तो इस विषय में वो कुछ भी हो गया। तो यहाँ कहा जा रहा है भक्ति योग की विधियों का पालन करो, भक्ति योग का उपयोग करो। दूसरे शब्दों में भक्ति योग का जो सिद्धांत है कि वो थ्योरी नहीं, उसको प्रैक्टिस करना है, उसका हमें उपयोग करना है अपने जीवन में, और उसको उपयोग करोगे उसके द्वारा असली प्रचार होगा। जैसे कि चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि भक्त को अपने आचरण के द्वारा धर्म के नियमों का पालन करने के धर्म दान धर्म संदेश को प्रस्तुत करने के। तो भक्ति योग का अर्थ है सरल भाषा में मान बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करना सदा भगवान की सेवा में, जीव द्वारा भगवान का गुणगान करना और योगेश्वर की उपासना करो। अध्यात्मिक जीवन हमारा आरंभ होता है श्रवणों और कीर्तनों के साथ, और बार बार इसी विषय के ऊपर बल दिया जा रहा है। ध्यान से देखा जाए आसक्ति बढ़ाने के लिए पहले क्या कहते हैं, भक्ति योग का पालन करो, परम भगवान के विषय में प्रश्न पूछो। तो हम बता रहे थे कि भगवत में क्या है प्रश्न उत्तर, भगवत गीता में क्या है वही विषय प्रश्न उत्तर। अर्जुन अनेक प्रश्न पूछते हैं, असल में ध्यान से देखा जाए अर्जुन वो प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम पूछते हैं। वैसे तो अर्जुन भगवान के सनातन साथी हैं, और ये सोचना कि अर्जुन अज्ञानता की स्थिति में आ गए थे और फिर उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे, एक प्रकार की भूल है। भगवान ने उन्हें वैसी स्थिति में डाला जिसके माध्यम से वो उपदेश दे सके हम सबकी बनाई। तो भगवद गीता में अनेक प्रश्न है और भगवान प्रश्न का उत्तर भी है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भी प्रश्न और उत्तर है, हर अध्याय में प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे कि इस अध्याय में पृथ्वीराज प्रश्न पूछ रहे हैं जीवन का क्या लक्ष्य है, यही प्रश्न पृथ्वीराज पूछ बैठे हैं। प्रेक्षण महाराज को सूचना मिली कि 7 दिन के पश्चात उनका अंत आ जाएगा, उन्होंने संत परिमंडल देकर यही पूछा, जिस व्यक्ति का अंतर वाला है उसे कैसे तैयारी करनी चाहिए। और साथ स्थल में जाओगे वहां युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से इसी प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, आप भी ऐसा आश्रम है, आप हमें शिक्षा दीजिए कि किस प्रकार गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वैदिक शास्त्रों के अनुसार हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो उनका प्रश्न क्या था, वैदिक शास्त्र के आधार पर तो हमें तीन सलाह प्रश्न पूछने चाहिए और उनका उत्तर प्राप्त होना चाहिए शास्त्र के आधार पर। और अगर हम ठीक स्थान में जाएंगे, भगवान लोग इन प्रश्नों का उत्तर कहाँ पूछना चाहिए, जैसे प्रभावित तात्पर्य में कहते हैं तो मानिक गुरु के माध्यम से दूसरे शब्द में उन व्यक्ति से प्रश्न पूछना चाहिए जिनके द्वारा आपको असली उपदेश मिल सके, वो स्वयं भक्ति योग की विधियों का पालन कर रहे हैं। ठीक स्थान में पूछोगे तो ठीक उत्तर प्राप्त हो। तो सनत कुमार क्या कह रहे हैं, प्रश्न पूछो परम भगवान के विषय। अर्जुन ने अनेक प्रश्न पूछे तो भगवान ने अर्जुन से कहा, मैंने ज्ञान किया था सूर्य के देवता को। अर्जुन ने पूछा, तो कैसे विश्वास करो कि आपने ज्ञान युवा संत दिया था जब वो कि आपसे पहले प्रकट हो चुके हैं। अर्जुन को पता था भविष्य में शायद कोई विश्वास नहीं करे, तो प्रश्न पूछिए और उस उद्देश्य के साथ इसके उत्तर का हम पालन करेंगे। अगर हम केवल प्रश्न को पूछे चर्चा करने के लिए कुछ लाभ नहीं, अगर हम किसी स्थान के पास पहुंचकर प्रश्न पूछते हैं इस उद्देश्य के साथ कि हमने इस उत्तर के शिक्षा का पालन करना है, फिर प्रश्न पूछने का लाभ है। तो सर कुमार कह रहे हैं कि भक्ति की विजय का पालन होगा जब आप शरण और कीर्तन करोगे और परम भगवान की महिमा का गुणगान करोगे। ये होना चाहिए हम सबका उद्देश्य कि हम भगवान के नामों में रुचि बढ़ाए, वो भगवान की कथाओं में रुचि बढ़ाए, कृष्ण कथा में हम रुचि बढ़ाए, ये होना चाहिए हम सबका लक्ष्य। कई बार भक्त पूछते हैं विनम्रता का भाव कैसे प्रकट हो, तो चैतन्य चैतन्य गीता में चैतन्य महाप्रभु उपदेश दे रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी को। रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय के सबसे धनी खानदान के इकलौते पुत्र थे और हालांकि उनके पास हर प्रकार की सुविधा थी, उन्होंने सब कुछ त्याग कर चैतन्य महाप्रभु के सुनने रखो और चैतन्य महाप्रभु के दो सेक्रेटरी थे, एक थे सूर नामदर दूसरे थे गोविंदर। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को सूर नामदर के पास रखा, उसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन रघुनाथ दास ने से पूछा कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, जीवन का क्या कर्तव्य है, और ये प्रश्न सुरदास ने आगे भगवान महाप्रभु के पास इसे पूछा था। महाप्रभु ने कहा कि वैसे तो तुम्हें शिक्षा सुरदास दे रहे हैं क्योंकि तुम्हें प्रश्न मेरे से पूछा है मैं दे दूंगा। वहां को मिल जाता है जीव द्वारा जल पानी करो कृष्ण कथा करो कृष्ण की चर्चा करो साधारण जीवन बिताओ। धार्मिक जीवन क्या है? सारा जीवन विचार विचार सारा जीवन बिताओ और ऊंचे विचार रखो सदा एक भाव रखो इस प्रकार जीवन अध्यक्ष प्राप्त हो जाता। आगे उन्होंने कहा सारे कपड़े भी कर दो और दूसरों को आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद रखे हो तो ये भाव रखोगे तो सदा हरि का नाम को उच्चारण कर सकोगे। ये संदेश हम लगभग रोज सुनते हैं चाहे कोई भी क्लास है आप ये संदेश लगभग हर तात्पर्य में पढ़ते हो। आगे तात्पर्य मुझे आपने सुना है ये नहीं कि ये उपदेश पहली बार सुन रहे हो पर अज्ञानता का प्रभाव माया का प्रभाव इतना तेज है कि हम सरलता के साथ भूल जाते हैं इसलिए हमें बार बार सुनने की आवश्यकता है। तो प्रभा जी तात्पर्य में कह रहे हैं भक्तियों की मार्ग में स्थिर होकर सेवा करने के लिए व्यक्ति को प्रमाणिक गुरु के माध्यम से शिक्षा लेनी चाहिए। यह कहा जा रहा है भगवान के नामों का शरणों के गुरु आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान के नाम अत्यंत मीठे हैं। इस विषय का वर्णन दीपक स्वामी करते हैं श्री उपदेश अमृत के सातवें श्लोक में। दीपक स्वामी कहते हैं भगवान के जो नाम हैं चीनी जैसे मीठे हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी चीनी जैसे मीठे हैं, भगवान के जो गुण हैं वो भी मीठे हैं। पर क्योंकि हमारे वाणी में अविद्या की बीमारी है हम इस अमीठापन महसूस नहीं कर पाते। इसीलिए आप देखते हो थोड़े ही समय में हम जाप करते हैं फिर थक जाते हैं, थोड़े समय में गंभीर हैं भगवत क्लास में बैठते हैं फिर यही देखते रहते हैं क्लास का समाप्त हो गया हम बाहर जाते हैं। हमारी इतनी रुचि गई है तो प्रश्न ये है कि हम रुचि कैसे बढ़ाएं? ये है हर ये होना चाहिए हम सब भक्तों का प्रश्न कि भगवान के प्रति रुचि कैसे बढ़ाए, आसक्ति कैसे बढ़ाए। इसे हमने ये सब चुनाव के स्पष्ट सनत कुमार उपदेश दे रहे हैं आसक्ति कैसे बढ़ाना। रूपक स्वामी जी कहते हैं ये मीठापन आप महसूस कर सकोगे अगर आप ध्यान से भगवान के नामों का उच्चारण करोगे और अगर ध्यान से उच्चारण करोगे तो जैसे कि रूपक स्वामी जी ने भक्ति रस अमृत रस में कहा है अनर्थ निवृत्ति वहां जो बहुत एक आकर्षण है वो दूर हो जाएगा। आप सबका अनुभव होगा कि जिस दिन आप ध्यान से जाप करते हो भक्ति की विधियों का पालन करते हो आपका ध्यान गुस्सा ऊंचा रहता है। इस बात है जिस दिन आप साधना में कमजोर मान लो चार पांच दिन आप साधना में कमजोर हो जाओ जाप इत्यादि नहीं करो क्या पीना होगा आपका ध्यान गुस्सा। कई बार भक्त पूछते हैं उत्साह कैसे बढ़ाएं? रूपक स्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्व कर्म प्रवर्तन संगति आगे सत्यवृत्ति सभी भक्ति प्रतिवृत्ति। अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहो क्या करना है? एक है उत्साहित होना। तो कई बार भक्त पूछते हैं विनम्रता का भाव कैसे अनुकूल हो हम सहनशील कैसे बने, तो ये सब गुण कैसे प्राप्त हो। यदि आप इन गुणों का वर्णन बार बार करते हो तो जो श्रद्धावान हैं उनकी इच्छा रहती है कि हम भी इन गुणों को अनुकूल करें, तो कैसे संभव है। ये संभव है ये शरण के माध्यम से सारे गुणों को अनुकूल कर सकते हो। अगर आप ध्यान पूर्वक या बाकी विधि को पढ़ पाते हो, और अगर आप नहीं दोगे तो सारे जो अवगुण हैं वो रहेंगे आप में, निकलेंगे नहीं, आपको सताते जाएंगे। जैसे एक समय बाकी श्रीदाना जी उनके एक शिष्य ने पूछा कि हम देखते हैं कि कई लोग भक्ति में तेजी से आगे बढ़ते हैं, कई बड़े धीमे धीमे, क्या है कारण। और इसके उत्तर में भक्ति सिद्धार्थ जी ने छोटी कथा सुनाई, शायद आपने भी पहले सुना होगा। इस कथा इस प्रकार की है, एक बड़ा नाव में बैठकर जा रही थी नाव नदी के पार। उस वक्त जब जागे तो उन्होंने देखा नाव वहां की वहां ही है, आगे बढ़ी गई। सब बड़े क्रोधित हुए, क्या है कारण, दूर देने लगे। वरना कर तो मेहनत कर रहा था मेरा। फिर उन्होंने देखा कि मेहनत तो की पर लंगर को बिताना भूल गया, इसे नाम आगे बढ़ेगी। तो हमारे भी यही स्थिति होती है, हम भक्ति में आ जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, पर जो लंगर है बहुत ही आकर्षण की प्रति, उसको बिताना नहीं चाहते, उसको वहीं रखना चाहते। ये परिणाम हो रहा है, जो आनंद जो उत्साह आपको प्रकट करना चाहिए आप प्रकट नहीं कर पाते। दोष आय नाम में नहीं, दोष भक्ति विधि में नहीं, दोष शास्त्रीय शिक्षण में नहीं, दोष है हमारे आचरण में, हमारी बुद्धि में। तो शरद कुमार इस श्लोक में बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं, और ये जो सारे कार्य हैं ये पुण्यात्मा है। हमारा सौभाग्य यह है कि शास्त्र द्वारा हमें हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो रहा है, और अगर हम प्रश्न पूछे तो ठीक स्थान पर पूछे हमें भी ठीक उत्तर मिल रहा है। हम सबका ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम आध्यात्मिक आसक्ति कैसे बनाए, ये होना चाहिए हम सबका प्रश्न। और ये प्रश्न, ये भाव, ये विचार रहेगा अगर आप सदा साधु की संगत में रहो। साधु संगत बहुत महत्वपूर्ण है, इसे कहा गया है साधु संग साधु संग सर्वसाधुता। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जो चैतन्य महाप्रभु ने पांच महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की, सबसे पहले उन्होंने कौन सा आदेश दिया, कौन सा आदेश दिया सबसे पहले, हाँ? साधु संग, क्योंकि अगर साधु संगत में रहोगे, खास करके उनकी संगत में जो कि आपसे अधिक ज्ञान रखते हैं, जो कि आपसे अधिक शरणागत हो चुके हैं, तो फिर उसका फल आप है। अगर आप उनकी संगत में रहोगे जो आपसे कमजोर है, आप सोचोगे कि उनसे हम प्रभावित होंगे, ये भूल है। इसे नारद मुनि ने कहा कि जब उनकी संगत में रहो तो आपसे अधिक मात्रा में आगे है, आपको प्रसन्न होना चाहिए। जब अपने बराबर के भक्तों को मिलो उनसे मित्रता का भाव रखना चाहिए, जब आप उन्हें मिलो योग्य से कमजोर है, क्या भाव होना चाहे। तो इस श्लोक में संत कुमार हम सबको महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। आज ऐसे नाते हो भरतपुर में लग जाता है और ये रखा रखी योजना की गई है इसमें के बोले जूने के समान में साल हम पूरा साल पूरे जूने को मना रहे हैं अलग अलग प्रोग्राम के द्वारा और आगे कृष्ण बाल मंदिर ने योजना बनाई है छह नई रथ यात्रा करने के लिए। वो भी ये है शायद दूसरी या तीसरी दूसरी कहा सब हो सके जाइए बाबा जी ने रथ यात्रा ना कर लो तो सबको बड़ा महत्व दिया। तो बाबा छोटे थे छह साल के तो वो रथ यात्रा और उत्सव करते थे और हर साल भीड़ बढ़ते गए। और इस गांव का तीसरा केंद्र दूसरा केंद्र खुला था सैन फ्रांसिस्को में, सबसे पहला केंद्र खुला था न्यूयॉर्क में 66 में और सिक्सटी फिर थोड़ी देर बाद सैन फ्रांसिस्को में। और पहली रथ यात्रा इस गांव के भक्तों द्वारा की थी 1967 में। तो अगले साल इस गांव के रथ यात्रा की पूर्ण जयंती मनाई जाएगी। पिछले साल आपने मनाया था बोले जो भी जबकि प्रभा जी भारत ये साल आप मना रहे हैं बोले जो भी जबकि इसमें की ऑपरेशन हो पहला केंद्र होना। अगले साल आप मनाएंगे बोले जो भी सभी पहले रहते हैं जगन्नाथ बड़े दयालु हैं। वैसे तो विराजमान रहते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर में पर विश्व की अनेक गलियों में घूमते हैं तो वह दर्शन देने के लिए कहा गया है जो व्यक्ति वहाँ के रथ को खींचे नाचे गाए वहाँ की खुशी ले तो उसे वहाँ जगन्नाथ जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। आप सब भक्त लोग जा सकते हो जाइए और बड़े उत्साह के साथ वहाँ गंगा जी की प्रशंसा के लिए नाचना गाना गंगा जी की असीम कृपा कीजिए। हरे कृष्ण।
Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.